फेडरल सरकार बजट से पहले रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के खर्च और जीवन यापन के दबाव को कम करने में अपनी कोशिश को आगे बढ़ा रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह फेडरल चुनाव से ठीक पहले बहुत सारा पैसा खर्च करके मतदाताओं का ध्यान भटकाने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपनी बजट संबंधी योजनाओं को बताना शुरू कर दिया है। उन्होंने सिडनी के दूसरे प्रमुख हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय रनवे के निर्माण की शुरुआत को चिन्हित करते हुए देश के बुनियादी ढांचे के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बात की। कहा जा रहा है कि यह आने वाले फेडरल चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि उन्होंने और ऑस्ट्रेलियाई ट्रेजरर जॉश फ्राइडनबर्ग ने इस पर अपना होमवर्क करा है और अब वे एक ऐसा बजट पेश करेंगे जो ऑस्ट्रेलियाई परिवारों को अपनी जीविका चलाने में मदद करेगा और उनके बोझ को भी कम करेगा।
Around half of the jobs here on Western Sydney Airport are from Western Sydney. People in Western Sydney are building this airport. We make things here in Western Sydney, and as Melissa McIntosh and I often say, and Sarah Richards and the whole team out here in Western Sydney, we make things, we manufacture things, and we build things, and we build big things.
Nancy Bird Walton अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2026 में खोला जाएगा और अब सरकार हर राज्य और क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए करीब 18 बिलियन डॉलर देने का वादा कर रही है। यह पिछले इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग में किए गए वादों से 110 बिलियन डॉलर अधिक है और इस कदम को फेडरल मिनिस्टर फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉल फ्लेचर बढ़ावा देना चाहते हैं।
The Morrison government committing very significant infrastructure funding, $17.9 billion in this budget. This is part of our long-term infrastructure plan for greater safety, greater efficiency, greater productivity.
मगर विपक्ष का इस पर रुख अलग है। विपक्षी ट्रेजरर के प्रवक्ता जिम चार्मर्स का कहना है,
And if they hadn't rorted tens of billions of dollars in the budget, there'd be much more room to provide responsible cost of living relief for Australian families. This Prime Minister only holds a hose if it's spraying borrowed money on the eve of an election.
वहीं सरकार सिर्फ देश के बुनियादी ढांचे पर ही खर्च नहीं करना चाहती। स्कॉट मॉरिसन ने यह भी घोषणा की कि सरकार अपनी गृह गारंटी योजना का विस्तार कर रही है, जो पात्र खरीदारों को सामान्य 10% के बजाय केवल 5% की जमा राशि के साथ संपत्ति खरीदने की अनुमति देगी।
I mean, here we are seeing dreams turned into reality at this airport, but I can tell you what, there are 300,000 Australians we've helped turn their dreams of a home into reality in just the last 3 years, and we're going to keep doing it.
Canberra में स्थित Australian National University के Centre for Social Research and Methods के Associate Professor Ben Phillips कहते हैं कि सीमा के भीतर इस योजना का विस्तार सरकार के लिए वोट विजेता प्रतीत हो सकता है।
At least a small number of people that will assist them get into the housing market where they otherwise wouldn't be able to purchase a home. I don't think it's going to be one that's likely to necessarily turn the election, but I think it's would be viewed favorably by many people in the who are voting.
मगर हाल के सप्ताहों में सबसे बड़ा चर्चा का विषय पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी रहा है, जो जीवन यापन के दबाव को बढ़ा रहा है। सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह अस्थायी रूप से ईंधन उत्पाद शुल्क को कम कर देगी, जो वर्तमान में 44.2 सेंट प्रति लीटर पर है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि यह बजट ऑस्ट्रेलियाई परिवारों के लिए सभी लागत दबावों को दूर करने के बारे में है, मगर विपक्ष के नेता एंथनी एल्बनीज का कहना है,
Cost of living is about your income in and then your costs out. The problem here is that the costs out have been going up and the income in through people's wages has been going down.
देश में 21 मई तक फेडरल चुनाव होने की संभावना है और दोनों राजनीतिक पक्षों के लिए इस बजट पर बहुत कुछ निर्भर है। SBS न्यूज़ से इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है नताशा कॉल ने SBS हिंदी के लिए।